प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 20 अक्टूबर 2016 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने प्यारे नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इस स्वागत के ही क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगा अपने उन 13 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं सुरेश सिंह पटेल जो महरौनी से हैं, प्रतीक्षा यादव इलाहाबाद से, देवनाथ पटेल रायपुर छत्तीसगढ़ से, ज्योति प्रकाश मीना कोटा राजस्थान से, रवि कुमार भोपाल मध्य प्रदेश से, प्रगति वाजपेयी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, युगांत बंसोड़ गोंदिया महाराष्ट्र से, पवार संतोष गोवर्धन बीड महाराष्ट्र से, विलास नरवाड़े बुल्डाना महाराष्ट्र से, नरेंद्र कुमार मित्तल जयपुर राजस्थान से, आनंद चंदौली उत्तर प्रदेश से, प्रदीप मीना होशंगाबाद मध्य प्रदेश से और अमन कुमार मौर्य जौनपुर उत्तर प्रदेश से। तो सुरेश, प्रतीक्षा, देवनाथ, ज्योतु, रवि, प्रगति, युगांत, संतोष, विलास, नरेंद्र, आनंद, प्रदीप और अमन, आप सभी 13 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब स्वागत के इस क्रम के बाद अब हम लोग आते हैं न्यूज एनालिसिस पर, जिसमें हम AIR न्यूज और अखबारों की न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में कुछ बातें करेंगे। दोस्तों, सच पूछे तो कल के AIR न्यूज में कुछ ऐसी विशेष घटना नहीं थी जिसे हम सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट मान सकें, लेकिन जो पहली म्यांमार की जो खबर थी मुझे लगता है कि उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान हमें भारत और म्यांमार के संबंध पर के बारे में देना ही चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं और आज भी कहूंगा कि चूंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, कुछ पृष्ठभूमि मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, ऐसी स्थिति में मानकर चले कि सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और म्यांमार के संबंध बहुत अहमियत रखते हैं। आप अगर पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा करके देख ले, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उसी से जुड़े हुए होते हैं। और चूंकि म्यांमार में अभी नया नया लोकतंत्र आया है और उसके बाद जो वहां की काउंसलर है, स्टेट काउंसलर, पहली बार भारत की यात्रा पर आई है, मेरी समझ से शायद पहली बार ही आई है, चलिए अगर पहली बार नहीं भी आई है तो उनकी यात्रा बहुत मायने रखती है। और चूंकि वो हमारे पड़ोसी देश में, पड़ोसी राष्ट्र है हमारा, इसलिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए कि मैप में पर जाकर हम म्यांमार की लोकेशन देखें कि वो है कहां पर। एक बार जब आप मैप में लोकेट कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि 5th बैच के स्टूडेंट्स के जो मुझे मेल मिल रहे हैं उसमें स्पेशली वो मेंशन कर रहे हैं कि यहां भूगोल के बारे में जिस तरीके से बातें बताई गई हैं उसके बेसिक्स के बारे में, तो उसका बड़ा चमत्कारिक प्रभाव वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। और खासकर मैप को लेकर के जो मैंने यहां डिस्कस किया था वो उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो मित्रों, आप सब जो डेली ऑडियो लेक्चर से जुड़े हुए हैं उनको भी मेरी यह बहुत ही विनम्र और बहुत ही व्यावहारिक सलाह है कि प्लीज आप मैप देखने की अपनी आदत डालिए और उसे आगे भी बढ़ाइए। ये बहुत ही जादू का काम करता है। इसे आप मैथ, जिस तरह से मैथ्स में फार्मूले के महत्व का महत्व होता है, ठीक उसी तरह से आप ज्योग्राफी में या इंटरनेशनल रिलेशन में मैप का महत्व मान सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप मैप पर जाकर के म्यांमार को देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत के ईस्ट में जब आप जाएंगे तो जो आपको दूसरे जो देश मिलेंगे ईस्ट में तो आपको बांग्लादेश मिलेगा और बांग्लादेश के बाद आपको म्यांमार मिल जाएगा, बिल्कुल आपको उसके करीब मिलेगा, यानी कि बहुत दूर नहीं है। बांग्लादेश तो आप जानते हैं कि वैसे भी बहुत ही छोटा सा देश है और वो खासकर हमारे जो नॉर्थ ईस्ट है, असम और दार्जिलिंग के हिस्से से वो सटा हुआ ही है और उसी से सटा हुआ है म्यांमार, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट देश हमारे लिए है। और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वहां कुछ आतंकवादी गतिविधियां, इस तरह से उग्रवादी गतिविधियां को चलती रहती हैं, तो उस इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी म्यांमार बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। और आपने न्यूज में ये बात सुनी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों देश इस बारे में भी आगे काम करेंगे। तो खासकर आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट का असम, मणिपुर, ये वाला जो हिस्सा है, ये म्यांमार से चूंकि काफी मिलता जुलता हिस्सा है और काफी हमारी सीमा इससे मिलती भी है, तो उस लिहाज से इंटरनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है, तो म्यांमार मायने रखता है। यहां मित्रों में एक बात और बताना चाहूंगा जो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आता है। ये जो म्यांमार है, आपने देखा कि बिम्स्टेक, इसके बारे में हम लोग बातें कर ही रहे हैं, एशियन संगठन, आपको मालूम है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये दो संगठन है, इन दोनों संगठन का मेंबर म्यांमार है। एक संगठन फिर एशिया का बच जाता है जिसे हम सार्क कहते हैं, सार्क संगठन का नाम आप जानते हैं। ये जो सार्क संगठन है इसमें म्यांमार मेंबर नहीं है, क्यों, लेकिन ये उसका मेंबर ऑब्जर्वर है। मेंबर ऑब्जर्वर कुछ ऐसे देश होते हैं जिन जो मीटिंग्स में आते हैं, उसके फुल फ्लेज मेंबर तो नहीं होते लेकिन वो उसमें आकर के उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो एक सम्मान की बात होती है, तो म्यांमार उसमें भी है। तो इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो फॉरेन की पॉलिसी है, उसके तहत भी म्यांमार बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो मित्रों अब देखिए, शायद इनकी यात्रा काउंसलर श्रीमती सूची की यात्रा कंप्लीट होने के बाद कुछ एडिटोरियल कमेंट या एडिटोरियल आर्टिकल्स इसके ऊपर आए, और जब ऐसा होगा तो फिर हम उस पर आगे बात करेंगे कि हमारे जो उनकी जो यात्रा रही है उस वो भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण रही है और भारत उसे किस रूप में आगे बढ़ाना चाहेगा, फिर हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे। मित्रों एक दूसरी जो बाकी तो कोई न्यूज ऐसी नहीं थी, एक छोटी सी खबर यह थी कि जो चर्चा में प्रोग्राम है उसका शीर्षक है भारत को पुनर्गठित करने में सरदार पटेल की भूमिका, सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं। तो आपके सिलेबस में जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, आजादी के बाद का भारत जो आपको पढ़ना है, मुझे लगता है कि उस लिहाज की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप इसे सुन सकें तो। एक साल तो इसको लेकर के प्रश्न भी पूछा गया, रियासतों के विलीनीकरण से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि अगर आप समय निकाल सके तो इस टॉपिक पर भी आपको सुनना चाहिए। मित्रों न्यूज में और कुछ खास नहीं है, अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज क्लिपिंग्स हैं फ्रेंड्स, उसमें से एक है पर्सनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हिंदू की क्लिपिंग्स हैं, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की क्लिपिंग है खासकर जो पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर के, जो आर्टिस्ट फिल्म एक्टर आर्टिस्ट हैं उनको जो बैन किया जा रहा है उसको लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट है, और साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल भी है जिसका टाइटल शीर्षक है डोंट स्टॉप द म्यूजिक। मैं समझता हूं कि ये दोनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे, हालांकि बहुत गहराई से तो चीजें नहीं लिखी गई हैं लेकिन फिर भी आपको कुछ कंटेंट तो मिल ही जाएंगे कि यदि परीक्षा में इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ लिया गया, कोई प्रश्न पूछ लिया गया, तो कम से कम आप अपनी बात तथ्यों के आधार पर रख सकें, ऐसा नहीं कि केवल एक इमोशनल ग्रिप में आकर के आप अपनी बात कहते चले जा रहे हैं। इसके बाद मित्रों एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया का है और जिसका संबंध इस बात से है कि भारत में धीरे धीरे जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता जा रहा है और फिर उसके पैरेलल ही जॉब भी कम होते चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत को किस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और टू द पॉइंट्स उन्होंने इसमें लिखा भी है। बहुत संभव हो सका तो मैं ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आप लोगों को करंट कंटेंट में हिंदी में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों ये न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में बातें थी, कुछ और क्लिपिंग्स हैं वो आप देख लीजिएगा, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स हैं जो आपको मिस नहीं करना चाहिए उनकी जानकारी मैंने आपको अलग से दी है। दोस्तों आज जिस टॉपिक को लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा वो टॉपिक है खासकर पर्सनल लॉ और समान सिविल कोड को लेकर के, समान सिविल जिसके बारे में कल हम लोगों ने बात भी की थी कि वित्त मंत्री जी ने ये बात उठाई है और इससे पहले भी ये बात गडकरी जी उठा नहीं गडकरी जी ने नहीं उठाई थी, ये बात हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं और सूचना प्रसारण मंत्री हैं उन्होंने ये बात उठाई थी कि इन दोनों को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। कल भी मैंने चर्चा की थी कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि इसमें गवर्नेंस भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और पॉलिटी भी है, तीनों चीजें हैं और कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस भी है, चारों चीजें हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे सिविल सर्विस के लिए लग रहा है। तो इस पर मैं आज आप लोगों से थोड़े से अपने विचार शेयर करना चाहूंगा। ये विचार मेरे व्यक्तिगत उस तरीके से नहीं है, ये खासकर एक ओपन डिस्कशन के लिए मैं कुछ चीजें आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो सिविल सर्विस के दृष्टि से आपको जिस तरीके से इसे लेना चाहिए या और सोचना चाहिए। मित्रों देखिए कि जो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ वो होते हैं जो किसी एक समुदाय में प्रचलित होते हैं, वो समुदाय किसी पर भी आधारित हो सकता है, जाति पर आधारित हो सकता है, धर्म पर आधारित हो सकता है, क्षेत्र पर आधारित हो सकता है, भाषा पर आधारित हो सकता है, लेकिन भारत में हम उसे ज्यादातर धर्म पर आधारित देखते हैं या समुदाय पर आधारित देखते हैं। कम्युनिटी होती है जिसमें कुछ चीजें प्रचलित होती है, तो चूंकि मेजर भारत में रिलीजन रहा है, डोमिनेंट फैक्टर रहा है, तो धर्म के आधार पर समूह बने हुए हैं, तो वो धर्म के वे समूह अपने अपने चीजों को लेकर चलते हैं और उससे उनका समाज आगे बढ़ता रहता है। इसे आप दूसरी भाषा में सरल शब्दों में उनकी अपनी परंपराएं कह सकते हैं, लेकिन ये परंपराएं ऊपरी परंपराएं नहीं होती हैं बल्कि वो गहरी परंपराएं होती हैं जिनसे उनके समाज की संरचना बनी होती है, है ना। परंपराएं का मतलब ये नहीं कि त्योहार बना रहे हैं या कपड़े पहन रहे हैं, भोजन है, ये सब परंपराओं के हमारे हिस्से होते हैं, शादी के रस्म रिवाज भी हैं, ये भी हमारी परंपराएं होती हैं, लेकिन जो पर्सनल लॉ होता है वो कानून है, वो विवाह, कितने विवाह कर सकते हैं, किससे विवाह कर सकते हैं, तलाक की परंपरा, संपत्ति के उत्तराधिकारी का कानून, ये सब के सब पर्सनल लॉ के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरी चीज होती है समान सिविल संहिता। हम सवाल समान सिविल संहिता को यहां अलग रख रहे हैं क्योंकि भारत में समान सिविल संहिता लागू नहीं की जा सकी है, लेकिन इसका संबंध इस बात से है कि एक ही व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, तो मैं भारत देश में दो तरह से रह रहा हूं, मेरी दो कैपेसिटी है। नंबर वन कि आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं भारत का एक नागरिक हूं, यानी कि मैं भारतीय हूं, ठीक है। दूसरी जो मेरी पहचान है वो मेरी अपनी कम्युनिटी के आधार पर है। कम्युनिटी के आधार पर मेरी पहचान अलग अलग हो सकती है, जैसे मैं अगर हिंदू धर्म को मानने वाला हूं तो मेरी एक कम्युनिटी एक बहुत ही ब्रॉड में हिंदू है, मैं अग्रवाल हूं तो मेरी एक कम्युनिटी वैश्य समुदाय की हो सकती है, या वैश्य समुदाय में भी अगर कोई अग्रवाल और कोई समुदाय है तो मेरी उसकी उस समुदाय का मैं हिस्सा हो सकता हूं। तो इस तरह से मेरी दो पहचान है, एक नेशनल जो मैं भारतीय के रूप में हूं और दूसरे एक समुदाय के अंग के रूप में। तो भारतीय के रूप में मेरा जो कानून है, मेरा जो धर्म ग्रंथ है, वो नो डाउट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन को मुझे एडहेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं। समुदाय के रूप में, जो समुदाय में जिन कानून की मैंने अभी बात कही, परंपराओं की जो बात कही, वह मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि वो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है और उसने जिस समुदाय का मैं सदस्य हूं उस समाज का निर्माण किया हुआ है, तो वो मैं उसे भी मानता हूं। ये मैं दो मेरी मान्यताएं हैं और दोनों के आधार पर मेरी जिंदगी चलती है, ये सबके साथ है। अब मित्रों होता क्या है, अब आप देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो कहां हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन और इस पर्सनल लॉ में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं जो जिसके लिए शब्द दिया गया ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि मनुष्य होने के नाते उसकी एक गरिमा है और उस गरिमा की रक्षा करने का दावा या कह लीजिए गारंटी, दावा तो नहीं, गारंटी हमारा संविधान देता है। ठीक है, वो संविधान कहता है कि ठीक है आप अपने समुदाय के हैं और उस समुदाय के रूप में आपको अपनी पर्सनल लॉ को फॉलो करने का पूरा अधिकार है क्योंकि हम एक सेकुलर स्टेट हैं, उस पर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो मानवीय गरिमा है, जहां स्वतंत्रता और समानता की बात है, वहां हमें देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मेरे पर्सनल लॉ हैं ये मानवीय गरिमा का उल्लंघन कर रहे हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अब सवाल ये उठेगा कि इन दोनों में प्रोमिनेंट कौन है, मेरा पर्सनल लॉ जहां मैं मनुष्य की गरिमा का उल्लंघन कर रहा हूं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बात कह रहा है कि गरिमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक बात कही गई हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं कि किसी एक समुदाय विशेष के लिए हैं, किसी एक जेंडर विशेष के लिए हैं, किसी एक वर्ग या क्षेत्र विशेष के लिए हैं, वो हर उस सिटीजन के लिए हैं जो इस देश का नागरिक है। और संविधान इस बात की गारंटी देता है कि धर्म, भाषा, जाति, जेंडर, इनके आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि कोई पर्सनल लॉ के अंतर्गत इस तरह का भेदभाव है तो सवाल यह है कि अब इन दोनों में से कौन प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन या पर्सनल लॉ। सारा का सारा जो झगड़ा है, सारा का सारा जो संघर्ष है, जो बहस है फिलहाल, वो इसी बात को लेकर है। मित्रों अगर आप देखें तो अब मैं थोड़ी सी बात इसे सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चलूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे पर्सनल लॉ जो बने हुए हैं, ये क्या पर्सनल लॉ शुरू से ही वही चले आ रहे हैं जो आज हैं? क्या हमने उसमें तब्दीलियां नहीं की हैं? चलिए आप हिंदू समाज की ही बात ले लें, और कल मैंने आपको राष्ट्रीय सहारा के क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कितनी चीजें बदल चुकी हैं। मतलब यहां एक ही पर्टिकुलर पीरियड में देख लीजिए कि हमारे दशरथ जो भगवान श्री राम के पिता हैं, उनकी तीन पत्नियां हैं, तीन रानियां हैं, लेकिन राम एक पत्नी व्रत, और उस मर्यादा के रूप में राम एक तरह से हमारे लिए बहुत पूज्य है। एक ही पर्टिकुलर काल में जहां दो पीढ़ियां हैं, एक पीढ़ी तीन पत्नी के सिद्धांत को स्वीकार कर रहा है और कहीं कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके बाद की पीढ़ी सभी चारों भाइयों में देखिए कि एक पत्नी का सिद्धांत है। और आज हम जिस स्थिति तक पहुंचे हैं, उस स्थिति में फिर बहुत से ऊंच नीच स्थितियां आई हैं, राजा महाराजाओं के दौर में, सामंतवादी समाज के दौर में बहुत सी चीजें चली हैं। इसके बाद जाकर के अब वो कानून के तहत ये पर्सनल लॉ को जो भी कहे चेंज किया गया कि नहीं, एक विवाह, हिंदू एक विवाह करेगा। और भी बहुत सी चीजें देखिए, सती प्रथा को देखिए, सती प्रथा, बलि, चलिए छुआछूत और जाति प्रथा को देख लीजिए। मतलब अगर आप वैदिक काल को छोड़ दें तो इसके बाद जो भी भारतीय परंपरा रही है या जो समाज की जो संरचना रही है उसका ढांचा जाति पर आधारित था, जिसका अभिशाप हमारे देश ने भोगा है। तो जाति आज भी बहुत प्रोमिनेंट है हिंदू समाज में, बहुत बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और आप देखिए कि जो आपको ऑनर किलिंग जैसे जो मामले मिलते हैं वो विजातीय विवाहों के तहत ही मिलते हैं, जैसे आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। हमारी चेतना उसे इतनी आसानी से अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रही है, लेकिन कानूनी रूप से उसे गलत ठहराया गया है, अस्पृश्यता को गलत ठहराया गया है, क्योंकि ये ह्यूमन डिग्निटी के विरुद्ध है, मनुष्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, और साथ ही साथ जो समानता है उसके भी खिलाफ है। तो मित्रों इस तरह की जो टसल्स हैं, ये टसल्स अभी हमारे समाज में, ये मत समझिए कि केवल अभी दिखाई दे रही हैं, और इसे आप इस रूप में भी मत लीजिएगा कि ये केवल मुस्लिम समाज के मामले में जो अभी बात आई है उसी में दिखाई दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर संविधान सभा के बहस को देखेंगे तो आप देख करके दंग रह जाएंगे कि जब उस समय हिंदू कोर्ट बिल लाने की जब बात हुई थी तो कितनी बहस हुई थी, और उसको पारित होने में 10 साल लग गए। और उस समय हिंदू समाज में भी एक ऐसा वर्ग था जो हिंदू कोड बिल लाने का विरोध कर रहा था, और वो कह रहे थे कि नहीं, सरकार को हमारे निजी मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उस समय भी इसका जबरदस्त रूप से विरोध हुआ है, और 10 साल की बहस के बाद फिर चीजें बदल पाई हैं। तो मित्रों समाज में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, इस तरह की बहस होनी चाहिए, होती ही रहती है, आगे भी होती रहेंगी। फर्क बस इतना ही है कि वो बहस कितनी स्वस्थ हो पा रही है, कितने सही तरीके से हो पा रही है, कितने समाजशास्त्री और वैज्ञानिक दृष्टि से हो पा रही है। तो मित्रों, कुछ तथ्य ये मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं और मैं चाहूंगा कि इन तथ्यों के प्रकाश में आप सब इस पर विचार करें और विचार करने के बाद आप सब अपना अपना मंतव्य स्थापित करें। तो दोस्तों, अब इस टॉपिक के विश्लेषण के बाद अब मैं आता हूं आज के अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। तो अपने सभी दोस्तों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ईमेल लिखे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, कुछ मेल थोड़े से, मैं दो तीन मेल हैं जिनकी का नाम लेकर के बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या बातें लिखी हैं। एक त्रिविधा मिश्रा हैं जो न्यू दिल्ली से हैं, वो हमारे फिफ्थ बैच में आई थी और उन्होंने एक वाक्य लिखा है कि सर, मैं जब यहां से 15 दिन की क्लास अटेंड करके गई तो उसके बारे में लिखा है। देखिए, उन्हीं के मैं वाक्य पढ़ देता हूं कि सर, आपकी क्लास में आने से पहले मैं सभी विषयों का एक सामान्य समझ ही रखती थी, लेकिन अब पहले की तुलना में एक बेहतर समझ विकसित हुई। हालांकि मेल बड़ा है, लेकिन मैं उस पूरे मेल को न लेकर के बस एक ही लाइन आपको बताना चाहूंगा कि त्रिविधा, ये बहुत अच्छा फीडबैक है आपका और मैं चाहूंगा कि आप अपने इस क्रम को लगातार बनाए रखें और भी मजबूत बनाएं। इसके बाद मित्रों, एक मेल है प्रवेश बिश्नोई का भी और उनका एक वाक्य है कि इन 15 दिनों ने न केवल मेरे पढ़ने के तरीके को ही बदला बल्कि जीवन को भी बदल दिया है। ये प्रवेश बिश्नोई का मेल है जो सिरसा हरियाणा से है। तो प्रवेश, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, एक और मेल है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, ये रुचिता शास्त्री मुंबई का मेल है। इन्होंने लिखा है कि सर, आफ्टर कमिंग बैक इन आई एम टोटल एक्सपीरियंसिंग अ न्यू लाइफ विथ फ्रेश एंड न्यू थॉट्स, न्यू पीपल एंड न्यू एंड इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग विच माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो नोटिस्ड। सर, वहां से आने के बाद मैं अपने को पूरी तरह से एक नए जीवन के संदर्भ में महसूस कर रही हूं। नए विचार, नए लोग और पढ़ने का नया तरीका और नया स्वाद भी मुझे पढ़ने में मिल रहा है और यहां तक कि मेरे इस नएपन के बदलाव को मेरे पेरेंट्स ने भी नोटिस किया है, उन लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया है। इट हैज बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ यू सर, आई फील माई सेल्फ लकी टू हैव अटेंड योर क्लासेस इन। मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। खैर, तो रुचिता, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और मैं चाहूंगा कि आप इस निरंतरता को बनाए रखें। हर स्टूडेंट जो हमारे क्लासेस का में कभी न कभी आए हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि वो अपनी निरंतरता को बिल्कुल भी न खोएं। और रुचिता, तुम्हारे लिए तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे ध्यान आ रहा है कि आखिरी फेयरवेल के समय में तुमने एक बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया था और तुम्हारे गले की आवाज की खूबसूरत मधुर आवाज अभी भी हम लोगों को याद है। तो प्लीज, चाहे जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी समय में, किसी भी स्टेज में कुछ भी करती रहो, लेकिन अपने इस रियाज को, गाने के रियाज को बनाए रखना, ये जीवन का स्वाद लेने का एक बहुत बड़ा आधार है। तो मित्रों, इन्हीं के साथ ही मैं कुछ और दोस्तों के नाम ले रहा हूं। वो है लव कुमार बुलंदशहर यूपी से, वरुण पांडे, प्रभात कुमार, विपिन श्रीवास्तव न्यू दिल्ली से, अजय जाधव पुणे से, साहिल कृष्ण जम्मू से, कीर्ति गुप्ता इलाहाबाद से, सुषमा, संजय कुमार रावत पिपरिया मध्य प्रदेश से, अनिल कुमार तिवारी खजुराहो मध्य प्रदेश से और शिवदयाल कुमार कैमूर बिहार से। आप सबका भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।